ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे राम कथा के आज के चौथे दिन। कल हमने सुना कि जब सभी मंत्रीगण अयोध्यावासी इस समाचार को सुनते हैं कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक घोषित हुआ है दूसरे दिन, तो सभी का उल्लास उत्साह इतना कि वो सभी महाराज दशरथ से कहते हैं कि कल क्यों, आज ही क्यों नहीं प्रभु श्री राम का राज तिलक किया जाए। और कल हमने कथा को विराम दी थी कि जैसे अयोध्यावासी इतने उत्साह में थे, देवलोक में सारे देवतागण वो चिंता में चले गए, वो चिंतित हुए कि ये क्या हो रहा है, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक और देवतागण, हालांकि वो प्रभु श्री राम के सत्ता के मंत्री हैं, तो जो मंत्री हैं वो तो राजा के पक्ष में होने चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि सारे देवता ये चिंता में क्यों चले गए और इन्होंने मीटिंग बिठाई। तो उदाहरण दिया गया है जैसे चोर के लिए चांदनी रात विपद है। अब साधारणतः चांदनी रात ये सभी पसंद करते हैं, परंतु चोरों के लिए चांदनी रात बिल्कुल पसंद नहीं करते वो, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो उसी के समान सारे अयोध्या वासियों के लिए प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक ये चांदनी रात के समान था, परंतु देवताओं के लिए वही चांदनी रात अब उन्हें खाए जा रही थी। तो प्रश्न है क्यों? तो उन्होंने सरस्वती को बुलाया और सरस्वती को बुलाकर उनको अपनी योजना बताई। सबसे पहले तो इस बात को हम समझ लेते हैं कि क्यों देवतागण चिंता कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि यदि राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर इतने सारे जो असुर जिन्हें मारने के लिए अवतरित हुए हैं उन्हें कौन मारने वाला है, राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर अयोध्या में तो सब कुछ सुखरूप चलने वाला है, सीता के साथ महाराज दशरथ, कौशल्या, यहां तक कि कैकेयी, इन सब के साथ प्रभु श्री राम का आगे का जीवन तो एकदम हैप्पी एंडिंग जिसे कहते हैं उस प्रकार का जीवन होगा। तो ये जो रावण और रावण के पार्टी के जो लोग इतना उपद्रव मचा रहे हैं, तो देवतागण प्रभु श्री राम को राजपद नहीं दिलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो सेवा में लगे थे प्रभु श्री राम की, और जो पूरे ब्रह्मांड का व्यवस्थापन है वो देखते हैं ये देवतागण। तो ब्रह्मांड के व्यवस्थापन में ये रावण इत्यादि बाधा डाल रहे थे, तो ये बाधा दूर हो और प्रभु श्री राम की सेवा अच्छी से हो सके, इसलिए वो चाहते थे कि प्रभु श्री राम राजपद को स्वीकार न करें। क्योंकि जब वो राजपद को स्वीकार नहीं करेंगे तब जाकर रावण इत्यादि का वध हो पाएगा। तो यहां पर एक बहुत ही सुंदर मुद्दा हमें सीखने लायक बताया गया है कि अयोध्यावासी वो प्रभु श्री राम के तात्कालिक सुख को देख रहे थे या अयोध्या के तात्कालिक सुख को देख रहे थे। तात्कालिक सुख किसे कहते हैं? इमीडिएट हैप्पीनेस। परंतु देवतागण वो तात्कालिक सुख से भ्रमित नहीं हो रहे थे, देवतागण आत्यंतिक सुख को देख रहे थे कि अभी तो वो भी चाहते थे कि सब ऐसे ही हो, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो, वो आकर वो फंक्शन अटेंड करें, परंतु वो आत्यंतिक सुख को देख रहे थे। तो यहां पर देवतागण हमें सिखा रहे हैं कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण कई बार अयोध्या वासियों की तरह होता है जो तात्कालिक सुख को देखता है, परंतु हम आत्यंतिक सुख को भूल जाते हैं। तो तात्कालिक सुख क्या है? इंद्रिय भोग से जो मिलता है, आंखों से, हमारे बाकी इंद्रियों से जो कुछ सुख मिलता है, इसे कहते हैं तात्कालिक सुख। परंतु आत्यंतिक सुख कब मिलेगा हमें? जब ये सारी इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा, उसे कहेंगे आत्यंतिक सुख। जैसे श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग है, महाराज चित्रकेतु जिन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था, इतनी सारी पत्नियां महाराज चित्रकेतु की, परंतु एक भी पुत्र नहीं। तो महाराज चित्रकेतु बहुत दुखी और वो केवल यही वर मांग रहे थे, जो भी आता उनके पास यही वर मांगते कि मुझे एक पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। तो अंगिरा मुनि वो पहुंचे और उन्होंने देखा कि महाराज चित्रकेतु केवल तात्कालिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। वो भाग रहे हैं कि मुझे कोई पुत्र मिल जाए ताकि जो तात्कालिक समस्या है वो दूर हो जाए, परंतु वो अपने आत्यंतिक सुख और आत्यंतिक दुख को नहीं देख पा रहे थे। इसलिए जबरदस्ती अंगिरा मुनि से आशीर्वाद लिया महाराज चित्रकेतु ने कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तो अंगिरा मुनि, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लगन में नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें पुत्र मिलना चाहिए, कि तुम्हारे जो सितारे या स्टार्स हैं उसमें नहीं लिखा हुआ, परंतु तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं मुझे पुत्र दो दो, तो ठीक है, तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद मैं देता हूं, परंतु उसका नाम रहेगा हर्ष शोक, जो तुम्हें हर्षित करेगा तात्कालिक तरीके से। तो तात्कालिक हर्ष तुम्हें मिलेगा, परंतु आत्यंतिक शोक देगा वो। तो महाराज चित्रकेतु ये भाषा नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उस समय वो अंधे हो गए थे, केवल इतना सुन लिया कि पुत्र मिलने वाला है, तो आत्यंतिक दुख की वजह से, आत्यंतिक दुख के संदर्भ में अंधा हो गए। तात्कालिक सुख के वजह से अंधा हो गए, आत्यंतिक दुख को नहीं देख पा रहे थे। अजामिल, अजामिल ने जब वो दृश्य देखा वन में तो तात्कालिक सुख के पीछे भाग रहा था अजामिल, और उसने आत्यंतिक दुख नहीं देखा कि इस दृश्य को देखने के वजह से मुझे यमदूत दिखने वाले हैं अंत में। तो ये सारे उदाहरण हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें हमारी वृत्ति को, विशेष रूप से मनुष्य जीवन में हमारी वृत्ति को, बुद्धि को इतना विकसित करना चाहिए कि हम तात्कालिक सुख के परे आत्यंतिक दुख और आत्यंतिक सुख, ये दोनों को देख लें। परंतु कलयुग में उल्टा होता है, कलयुग में कोई आत्यंतिक दुख और सुख को नहीं देखना चाहता। अरे आगे चलकर सुख मिलेगा, आध्यात्मिक संसार में किसने देखा है? अभी जो मिल रहा है लूट लो, कौन देखेगा कि अगला जीवन है कि नहीं, और ये जो कुछ लिखा गया है शास्त्र में ये सत्य बात है कि नहीं? तो देवतागण वो प्रभु श्री राम के तात्कालिक सुख से प्रभावित नहीं हो रहे थे। इसे कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी का अर्थ ये नहीं जो दूरदर्शन देखता रहे, कि जो बहुत दूरदर्शन देखता है मैं दूरदर्शी हूं। दूरदर्शी उसे कहते हैं जो आत्यंतिक सुख और दुख को पहले पहचान ले और अपने आप को संभाल ले। तो देवतागण फिर माता सरस्वती को बुलाए और माता सरस्वती से कहा कि आप ही इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। कौन से कार्य को? कि कल प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है और आपको अयोध्या नगरी जाना है, और आपकी बुद्धि से, आपकी शक्ति से इसे रोकना। अब देखिए माता सरस्वती वो अपने आप को सोचने लगी कि मुझे बुलाकर भी क्या कार्य दिया। वो अपने आप को कोसने लगी कि फालतू मैं ये स्पीच का मिनिस्टर बनी। तो माता सरस्वती एक उदाहरण देती है कि मेरा कार्य उस प्रकार से आप लोग कराना चाहते हैं जैसे कि मानो कि खिला हुआ कमल है और हेमंत की रात में जब ओस पड़ती है तो खिले हुए कमल को जला देती है, तो चांदनी रात में खिला हुआ कमल हेमंत ऋतु के कारण जब जल जाता है तो वैसे मुझे आप लोग भेज रहे हो। क्यों? कि जहां पर इतना उत्साह उल्लास, सभी लोग तैयारियों में लगे हैं कल, अरे मैं तो, मुझे भी तो इनविटेशन कार्ड आया था, मैं जाने वाली थी वहां पर प्रभु के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए, और यहां पर अभी मुझे आप लोग बोल रहे हो कि वहां पर जाकर सब कुछ उल्टा करो। तो माता सरस्वती को ये कुछ अच्छा नहीं लगा, परंतु देवताओं ने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो। आप चिंता कर रही हो कि आप प्रभु श्री राम को दुख दोगे, अरे प्रभु श्री राम सुख और दुख से परे हैं, वो हमारी तरह कोई जीव नहीं है कि वो राज्याभिषेक से सुखी हो जाएं और यदि राज्याभिषेक न हो तो दुखी हो जाएं। अरे हम लोग ऐसा हैं कि हमें जब कुछ नहीं मिलता तो रोनी सूरत कर बैठ जाते हैं, और जब कुछ मिलता है तो इतने हर्षित हो जाते हैं मानो हम ही प्रभु हैं, महाप्रभु हैं। भगवंत प्रभु श्री राम वो प्राकृत सुख और दुख के परे हैं, तो आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल भी उन्हें दुखी नहीं कर सकोगे, ये देख लेना, हम लिख कर देते हैं। परंतु फिर भी माता सरस्वती को यह बात जची नहीं। अब देवताओं ने जब ये सब कुछ कहा है, उनका ऑर्डर है, तो माता सरस्वती को मानना पड़ेगा। और फिर देवताओं ने यह बात कह दी माता सरस्वती से कि यह प्रभु की इच्छा है, अरे हमारा ऑर्डर नहीं, उनका ऑर्डर है, ये रामायण का स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा है, तो ये उनकी कहानी है और हम केवल क्या कहते हैं उसे, इंस्ट्रूमेंट है। तो माता सरस्वती फिर ये सब कुछ सुन के कहती है, जो भी हुआ मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये जाकर वहां पर अब एक दिन में वहां पर ये सब कुछ समस्याएं पैदा करूं मैं, तो माता सरस्वती अब अयोध्या की तरफ निकली और रास्ते में वो देवताओं को कोसने लगी कि ये जो देवता हैं पता नहीं इनकी मति चलती कैसी है, अरे करना था तो खुद करो, मुझे लगाया है इस काम में और कोई वेतन भी नहीं मिलने वाला, बिना वेतन का लगाया है, तो कोस रही और कहती है ये देवता रहते हैं ऊंचे लोकों में, परंतु विचार देखो कितना ऊंचा है इनका, तो जीवन ऊंचा है परंतु विचार ओछा, यह देवता। परंतु फिर माता सरस्वती वो विचार करने लगी कि देवताओं ने जो कुछ कहा उसमें कुछ तथ्य भी है, और फिर वो बहुत प्रसन्न हो गई माता सरस्वती। प्रसन्न इसलिए हो गई कि अब देखिए माता सरस्वती क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि मुझे अवश्य जाकर ये राज्याभिषेक रोकना चाहिए, और वो कहती है इसमें मेरा हित है। कैसे? क्योंकि यदि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक मैं रोक दूंगी तो प्रभु श्री राम को वन में जाना पड़ेगा, तो वन में प्रभु श्री राम जाएंगे तो वहां लीलाएं ज्यादा होंगी उनकी, जब वो अयोध्या से नासिक आएंगे तो नासिक में ज्यादा लीलाएं होंगी, अयोध्या में क्या, बस रोज गए अपने राज सिंहासन पर बैठे सब ठीक ठाक, हां वहां पर तो सब ठीक ठाक ही होने वाला है, राम राज्य, तो रोज क्या लीलाएं होंगी अयोध्या में प्रभु श्री राम की राजा के रूप में, बस ऑफिस गए, जैसे आप लोगों में से कई लोग ऑफिस जाते हैं क्या, रोज उसका डायरी बनाते हैं, आज मेरी लीला ऑफिस में, मैंने आज ऑफिस में क्या क्या लीलाएं की, अरे वहां तो पीला हो रहे हैं, लीला क्या होगी। तो माता सरस्वती ने सोचा कि अच्छा है कि ये वन गमन करें, क्योंकि जब ये वन में जाएंगे तो वहां पर कितनी सारी लीलाएं होंगी इनकी, और ये सारी लीलाओं का गान करेंगे इनके भक्त, बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि इत्यादि, तो जब इन लीलाओं का गान ये ऋषि मुनि करेंगे तो मेरा आह्वान करेंगे, क्योंकि जब तक मैं इनकी जिह्वा पर नहीं बैठूंगी तब तक ये प्रभु श्री राम की लीला का गान नहीं कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा है कि मैं जाकर इस राज्याभिषेक को रोकूं, इसमें मेरा ही हित है, क्योंकि मुझे आप आत्यंतिक सुख, यहां पर वो भी आत्यंतिक सुख देख रही हैं कि आत्यंतिक सुख क्या है मेरे लिए, कि आगे चलकर मैं ऐसी सेवा में लगने वाली हूं कि मेरे वजह से प्रभु श्री राम की लीला का गान, उनका कीर्तन होता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां पर देखिए कि कितना सुंदर विचार है माता सरस्वती का। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से कोई कहेगा कि माता सरस्वती तो शत्रु बन रही है, अपने ही स्वामी की शत्रु बन रही है माता सरस्वती, परंतु एक माता जैसे अपने पुत्र पर इतना स्नेह करती है कि कई बार उसे दंडित करती है, परंतु स्नेहवश दंडित करती है। वैसे ही माता सरस्वती प्रभु श्री राम को एक प्रकार से दंडित करने वाली हैं, परंतु इसके पीछे इनका स्नेह छिपा है। तो अब पहले माता सरस्वती ने चिंता की कि ऐसा कार्य मुझे सौंपा है, थैंकलेस टास्क जिसे कहते हैं, तो पहले चिंता हुई फिर हर्षित हुई वो कि नहीं इसमें मेरा ही हित है। अब फिर चिंता कर रही हैं माता सरस्वती, चिंता ये कर रही हैं कि इस कार्य को मैं सिद्ध करूंगी कैसे, क्योंकि अयोध्या में तो मैं किसे ऐसा सूत्र बनाऊंगी कि जिसके द्वारा मैं इस राज्याभिषेक को रोक सकूं, कोई तो है नहीं अयोध्या में, अरे कोई विलन ही नहीं है वहां पर। तो मैं किसे नियुक्त करूं? तो माता सरस्वती वो ढूंढ रही थी पूरे अयोध्या में कोई ऐसे व्यक्ति को जिसे माता सरस्वती उसकी बुद्धि फेरे और उसके वचनों को फेरे, जिसे अपयश की वो पिटारी बना सके, प्रभु श्री राम के अपयश की पिटारी वो बना सके, ऐसे व्यक्ति को माता सरस्वती ढूंढ रही थी, परंतु कोई मिला नहीं। जहां वो जाती सब जगह पर केवल प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, तो वो किसे भी देखती तो माता सरस्वती सोचती कि अरे ऐसा कुत्सित विचार और ऐसा कुत्सित कर्म ऐसे राम भक्त के द्वारा मैं कैसे करवाऊं। तो ढूंढते ढूंढते फिर एक व्यक्ति उन्हें मिल गए और वो थी मंथरा। तो मंथरा को ढूंढ लिया तो माता सरस्वती ने स्पॉट किया, हाँ ये एक है जिसे अयोध्या में कोई जानता नहीं। मंथरा के विषय में हम बताएंगे कि मंथरा को कोई जानता नहीं था अयोध्या में, हालांकि वो कैकेयी की निज दासी थी मंथरा। तो मंथरा को चुना और मंथरा वो अयोध्या की भी नहीं थी। मंथरा के विषय में कहा गया है कि एक तो वो कुमति थी, उसकी मति कुमति थी मंथरा की, पहले से मंदमति वाली कुमति वाली। तो कुमति और कुजाति, कुजाति कहते हैं जब किसी के माता पिता भ्रष्ट होते हैं तो उसको कुजाति कहते हैं। तो उसके माता पिता को कोई पता नहीं था, भ्रष्ट माता पिता की थी मंथरा। तो कुमति कुजाति और कुबरी, उसे कुबड़ था पीछे। और ग्रंथकार कहते हैं कि ये जितने भी सारे षड्यंत्र थे ना मंथरा के, वो माता सरस्वती ने उसके कुवड़ में डालकर गई थी, वो गोडाउन था मंथरा का, कि वहां से ये सारे षड्यंत्र ले लेकर, जैसे एक योद्धा होता है ना वो तुणीर पीछे रखता है तो वहां से बाण निकाल निकाल कर फेंकता है, वो मारता है, वैसे ही मंथरा अपने पीछे के कुबड़ से निकाल निकाल कर एक एक षड्यंत्र फेंक रही थी कई कई के ऊपर। तो कुमति, कुजाती और कुबरी, ये मंथरा। तो माता सरस्वती ने मंथरा को चुना और सुंदर उदाहरण दिया गया है, जैसे कि जब किसी को कचरा फेंकना होता है तो कहां फेंकेगा कचरा, जहां पहले से कचरा फेंका गया है वहीं फेंकेगा ना, कोई साफ सुथरी जगह ढूंढकर तो नहीं फेंकेगा कचरा। तो जैसे कचरा फेंकने के लिए गंदी जगह ढूंढी जाती है, कचरे का डब्बा जहां पहले से कचरा फेंका गया है, तो इसलिए कहा गया है कि आजकल कलयुग में ये सारे जो इंद्रिय भोग के साधन हैं ये क्या है, कचरा। और इस कचरे को लोग कहां फेंक रहे हैं, वहीं फेंकेंगे जहां पहले से कचरा है अपने हृदय में। तो हृदय पहले से कूड़ा करकट की जगह बना ली है, और क्योंकि कूड़ा करकट की जगह बना ली है तो इसमें और कचरा फेंकना चालू रखे हैं लोग। न्यूज़पेपर, टीवी और इंद्रिय भोग और इन सब के द्वारा और कचरा फेंक रहे। तो ये उदाहरण दिया है कि माता सरस्वती ने देखा कि ये पहले से कुमति ऐसी है तो ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा नॉब हिलाना होगा और ये स्वयं ही काम शुरू कर देगी। तो माता सरस्वती मंथरा की मति भ्रष्ट कर चले गए। तो जैसे ही मंथरा की मति भ्रष्ट हुई तो अब मंथरा ने देखा, देखिए वही मंथरा अब तक उसकी दृष्टि दूसरी थी, वो देख रही थी सारी तैयारियां प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की चल रही हैं, परंतु अब जब मति भ्रष्ट हो गई तो वही दृष्टि कुदृष्टि हो गई। अब सहन नहीं हो रहा था मंथरा को ये सब उत्सव तैयारियां देखना, सहन नहीं हो रहा था मंथरा से। तो मंथरा, देखिए कि मंथरा ऐसी स्त्री थी अयोध्या में, जैसे हमने कहा कि माता सरस्वती ने ढूंढा कि इसे कोई जानता नहीं क्योंकि ये अयोध्या की थी नहीं, तो इसलिए जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला तो सभी अचानक पूछने लगे कि ये हुआ कैसे। तो जब कारण पूछा गया कि कारण क्या है वनवास मिलने का, तब फिर सबको पता लगा कि कई कई कारण हैं, परंतु कई कई पर भी किसी को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम तो कई कई करती थी प्रभु श्री राम से। उन्होंने कहा कैकेयी ऐसा काम नहीं कर सकती, तो कैकेयी की मति को किसने भ्रष्ट किया, तो बताया गया मंथरा। मंथरा ये कौन है, तो सभी पूछने लगे ये कौन है मंथरा, किसने इसे पासपोर्ट वीजा दिया इधर का, ना तो इसका कोई आईडी कार्ड है ना राशन कार्ड है अयोध्या का, कहां से आई है ये मंथरा। तो पहली बार अयोध्या वासियों को पता लगा कि मंथरा नामक कोई स्त्री रह रही है अयोध्या में। ये वो मंथरा की स्थिति थी वहां पर। तो वो सांप की तरह फुफकारने लगी जब उसने देखा ये सारी उत्सव की तैयारियां, तो वो सांप की तरह फुफकार रही थी मंथरा। जैसे सांप जब किसी नेवले को देखता है तो कैसे फुफकारता है, वैसे मंथरा फुपकारने लगी, फुपकारने लगी, और वो फुपकारते हुए जाती है कैकेयी के भवन में, क्योंकि कैकेयी की वो दासी थी तो कैकेयी के भवन में जाती है। केवल कैकेयी जानती थी और कैकेयी ने मंथरा पर दया कर उसे रख लिया था कि ठीक है तुम रहो, तुम मेरी दासी बन जाओ। कैकेयी बहुत करुणा हृदय की थी, तो कैकेयी ने इस मंथरा की दशा को देखा था कि ये एक तो अपंग है, कुबड़ी है, और इसका कोई पति भी नहीं, कौन इससे विवाह करेगा, तो इसलिए उसे सपोर्ट देने के लिए कैकेयी ने अपनी दासी बना लिया था। और केवल कैकेयी जानती थी मंथरा को अच्छे से, तो मंथरा गई भागते हुए कैकेयी के भवन में, और एकदम उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था और कांप रही थी मंथरा, एकदम चेहरा लाल और कांपती हुई जब कैकेयी के पास गई तो कैकेयी ने मंथरा को देखा और कैकेयी हंसने लगी, हंसने लगी, क्योंकि कैकेयी जानती थी कि ये मंथरा ये बोलने में बहुत चतुर है, बहुत बड़बड़ी है। ये मंथरा बहुत बोला करती थी, जब नहीं बोलना होता था तब बोलती थी वो, और जब बोलना होता था तब चुप रहती थी। तो ये मंथरा अक्सर गलत समय पर जब बोलती तो इसे डांट मिलती, और सबसे ज्यादा डांट इस मंथरा को मिलती थी लक्ष्मण जी से। तो ये जब ऐसे कांपते हुए सूजा हुआ चेहरा लाल जब कैकेयी के पास आती है तो कैकेयी हंस के बोलती है, शायद लक्ष्मण ने थप्पड़ मारा होगा इसलिए लाल दिख रहा है इतना तुम्हारा चेहरा, क्या गलत बात बोली बोलो तुमने, क्यों थप्पड़ मारा लक्ष्मण ने? क्योंकि लक्ष्मण आए दिन इस कुब्जा, कुब्जा की तरह थी वो भी, कुबड़ी थी, आए दिन इस मंथरा को लक्ष्मण दो तीन लगाया करते थे। ऐसे ही आते जाते वो कुछ बीच में कुछ बोल देती तो लक्ष्मण दो तीन थप्पड़ लगा कर जाते, तो लक्ष्मण की बहुत कृपा मिली थी मंथरा को। तो इसलिए कैकेयी ने पूछा कि बोलो क्या बोली तू कि लक्ष्मण ने थप्पड़ मारा और ऐसा सूजा हुआ है तुम्हारा गाल। तो मंथरा आप देखिए, मंथरा क्योंकि माता सरस्वती ने अब शक्ति दी है तो अब मंथरा के वाक्यों को सुनिए पूर्ण प्रकार से, माता सरस्वती के आवेश में आकर अब मंथरा शुरू करती है, रोते हुए बिलखते हुए आंसू बह रहे हैं। सबसे पहले कुछ कही नहीं हुई, जब कैकेयी ने पूछा कि बोलो बोलो क्या हुआ क्या हुआ, तो मंथरा ने कुछ कहा नहीं, केवल रोना 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 शुरू रखा। तो कैकेयी ने देखा कि इतने समय तक कभी ये रोई नहीं, तो कैकेयी चिंता में, कैकेयी की हंसी रुकी और कैकेयी चिंता में चली गई। अब देखिए कैकेयी चिंता में जाती है तो क्या करती है, वही कैकेयी जो अब आगे चलकर क्या करने वाली है। तो जैसे ही कैकेयी चिंता में गई तो कैकेयी ने मंथरा से पूछा, राम ठीक तो है ना, मेरे राम ठीक तो है ना, वो कुशल तो है ना। स्वाभाविक रूप से कैकेयी की चिंता अपने पुत्र के प्रति नहीं, प्रभु श्री राम के प्रति हमेशा हुआ करती थी। तो जब मंथरा को इतने समय तक रोते हुए देखा तो कैकेयी ने स्वाभाविक रूप से प्रभु श्री राम की कुशलता के बारे में पूछा। तो अब मंथरा बोलना शुरू करती है, रोते हुए बोलती है, अरे लक्ष्मण क्या मारेगा मुझे। लक्ष्मण की हिम्मत कि मुझे मारे, अरे वो जानता नहीं मैं किसकी दासी हूं। देखिए यहां पर उसकी चतुराई, सबसे पहले गुणगान कर रही है कैकेयी, ताकि कैकेयी का घमंड थोड़ा बढ़ाए, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रही हो। तो कहते हैं कि लक्ष्मण की हिम्मत कि वो मुझे मार पाएगा, वो जानता नहीं कि मैं किसकी दासी हूं। अरे मैं आपकी कैकेयी महारानी, मैं आपकी दासी हूं, किसकी हिम्मत मुझे स्पर्श भी करे। और कुशलता, आप कुशलता के विषय में पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम, ये राम की कुशलता के अलावा और कोई कुशल नहीं है इस अयोध्या में। सभी दुखी हैं। तो अब देखिए कि कैकेयी अब वो धीरे धीरे थोड़ा और संशय करने लगी कि ये मंथरा ऐसी बातें क्यों बोल रही। तो मंथरा ने कहा, महारानी आप जानती हैं क्या हो रहा है अयोध्या में? तो पूछा क्या हो रहा है? अरे कल प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक है। तो कैकेयी ने जब सुना, अब तक कैकेयी को पता नहीं था, कैकेयी को पता नहीं था कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक है कल। तो जब कैकेयी ने सुना तो कैकेयी इतना प्रसन्नचित हो गई कि कैकेयी ने कहा, मंथरा तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगी, ऐसी खुशखबर तुमने सुनाई है मुझे। मंथरा सोचने लगी कि ये तो उल्टा पासा पड़ रहा है। तो अब कैकेयी वो प्रभु श्री राम का गुणगान करने लगी कि अरे मेरे मन में हर समय मैं यही आशा में थी कि कब मेरा राम राजा बनेगा, मैं इसी आशा में थी हर समय। और तुम्हारे मुख से ये खुशखबर, तुम्हारे मुख में घी शक्कर और जो मांगो वो तुम्हें मैं दूंगी। और कई कई मंथरा से कहती है कि मंथरा आज मैं तुम्हें अपने मन की बात बताती हूं। अब देखिए कई कई किसे अपने मन की बात बता रही है, ऐसी उल्टा स्त्री को कहती है कि मैं हर समय भगवान से प्रार्थना करती रहती हूं कि यदि मुझे अगला जीवन मिले तो मुझे स्त्री का जीवन मिले। और वो भी क्यों और कैसी स्त्री का जीवन, मुझे ऐसी स्त्री बनाया जाए कि मैं प्रभु श्री राम की माता बनूं और सीता मेरी पुत्र वधू बने। ये देखिए कैकेयी के विचार। तो मंथरा ये सब तो सुनकर और जैसे मानो सांप को कोई और छेड़ रहा है। तो मंथरा और फुंकारने लगे। तो मंथरा अब थोड़ा अपनी आवाज को ऊंचा किया मंथरा ने और कैकेयी से कहती है कि वास्तविक रूप में आप के जैसा कोई बुद्धू व्यक्ति मैंने देखा नहीं आज तक। कि यदि कोई बुद्धू भी है तो इतना बुद्धू नहीं होना चाहिए आपके समान। तुम कैकेयी पूछती क्या मतलब है तुम्हारा, बुद्धू कहती हो मुझे और क्या? अरे एक पशु भी अपना हित जानता है, एक पशु भी जानता है कि कहां पर उसका हित है और कहां अहित है। परंतु आप जैसे बुद्धू स्त्री कुछ नहीं जान पा रहे। और देखिए अक्सर देखा गया है कि पशु जो हैं वो जान लेते हैं अपना हित और अहित, बहुत बार मनुष्य नहीं जान पाते। अब देखिए हाईवे पर पशु वो जान जाते हैं कि कहां चलना है कहां नहीं चलना है, गाड़ी आएगी ऊपर से टकरा कर मार देगी तो वो हट जाते हैं। मनुष्य के छोटे से किसी शिशु को छोड़ दो वहां पर, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो ज्यादा बेवकूफ रहता है पशु से। इसलिए पशु जब पैदा होते हैं तो पशु के जो माता पिता है ज्यादा देखते नहीं पशु को, छोड़ देते हैं। गाय का बछड़ा पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू करता है और बाकी सारे पशु भी ज्यादा देखरेख नहीं करनी पड़ती। परंतु मनुष्य का कोई शिशु देखिए कितने समय तक उसे पहले पालने में फिर गोदी में फिर हाथ में यहां वहां हर समय 24 घंटा बेटा कहां गया बेटा क्या कर रहा है ये वो ये क्यों, क्योंकि बेवकूफ बुद्धू रहते हैं बचपन में सभी, कुछ दिमाग नहीं कहां जाना चाहिए क्या खाना चाहिए कब बोलना चाहिए, जब जब नहीं बोलना चाहिए जब मैं तब चें शुरू हो जाती है। प्रवचन में चुप रहना चाहिए तब उनका वचन चालू होता है। तो यहां पर मंथरा कई कई से कह रही है कि पशु भी अपना हित जानता है परंतु आप जैसी बुद्धू स्त्री कुछ नहीं जानती। अरे थोड़ा चतुर बनिए, जैसे स्त्रियां चतुर होती हैं वैसे चतुर बनिए। तो अब कई कई थोड़ा क्रोधित होने लगी, ठीक ठीक बताओ क्या बोलना चाहती हो। ज्यादातर आप किसी को गाली दो उसे उतना बुरा नहीं लगता, यदि किसी को बुद्धू कहो तो वो सबसे बड़ी गाली होती है। यदि किसी को ये कहो कि तुमने मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा तुम्हारी ऐसी बुद्धि तुमने इस्तेमाल की तो उसमें उसे गुणगान लगता है, अरे कम से कम बुद्धि तो है। परंतु किसी को कह दो अरे तुम तो बेवकूफ बुद्धू मंद बुद्धि तो वो बहुत बड़ा एक आघात सा लगता है, सबसे बड़ा आघात। तो अब मंथरा कहती है कि ये जो राज्याभिषेक कल राम का किया जा रहा है ना, ये सारा षड्यंत्र है दशरथ का और कौशल्या का, ये दोनों की मिली भगत है, ये दोनों की मिली भगत है। क्योंकि कौशल्या नंदन है ये राम, इसलिए इनकी मिली भगत है, इसलिए राम का ये कर रहे हैं राज्याभिषेक और तुम्हें षड्यंत्र में फांस कर तुम्हें प्रहार कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर इसका। तो जब कैकेयी ने सुना कि ये कौशल्या के विषय में राम के विषय में दशरथ के विषय में ऐसे अपशब्द कह रही तो कैकेयी ने सीधा एक मारा तमाचा, थप्पड़ मारा इस मंथरा को और कहा कि तुम फिर से ऐसे वाक्य कहोगे तुम्हारी जीव उखाड़ लूंगी, तुम्हारी हिम्मत कि तुम लांछन लगा रही हो महाराज दशरथ के ऊपर, लांछन लगा रही हो कौशल्या के ऊपर, फिर से ऐसे वाक्य कही तो नौकरी से बाहर और तुम्हारी जीव उखाड़ लूंगी। तो अब मंथरा देखिए, मंथरा जोर जोर से रोने लगी, बिलख कर रोने लगी, पटक पटक कर रोने लगी और कही हाय रे हाय, क्या किसी का हित करने जाओ और वही वही अपना हित नहीं चाहते हैं और ऊपर जो हित करने जा रहा है उसका जीव उखाड़ रहे हैं। हाय रे हाय, तो मंथरा इस प्रकार से अब अपने आप को एकदम जैसे कि कोई पशु को कसाई मारने वाला है और वो पशु अब देख रहा है कसाई की तरफ करुणा भरी नजरों से, वैसे मंथरा कैकेयी की तरफ देख रही कि मानो कैकेयी ने चाकू चला दिया मंथरा के ऊपर थप्पड़ के रूप। तब कैकेयी की गलतियां देखी। अब सबसे पहले तो कैकेयी को इतना सुनना ही नहीं चाहिए था, परंतु इतना सुन रही है कैकेयी, वैष्णव अपराध। तो और फिर कैकेयी ने जब मंथरा की दशा देखी तो मंथरा ने कहा ठीक है, अब आपने मेरी जीभ उखाड़ ली है तो अब मैं क्या बोलूं, अब तो बस जीवन भर मैं मौन रहूंगी। अब बोल रही उसी जीभ से, देखिए इसका कुत्सित हृदय। अब तो मैं जीवन भर मौन रहूंगी और यदि बोलना भी पड़े तो आप ही दूसरी जीभ दीजिए मुझे। एक तो जीभ उखाड़ दिया आपने, तो दूसरी जीभ दीजिए ताकि उस जीभ से केवल आपकी चापलूसी करती रहूं मैं। अरे मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूं जो केवल आपकी चापलूसी करते रहे और आपका अहित उसमें देखे। अब छोड़ो क्या बोलना, अब जी भी उखाड़ ली तब क्या बोलना, अब मौन रहूंगी मैं। अरे तो चुप रहो ना फिर, तो 10 बार तो बोल दिया मौन रहूंगी मौन रहूंगी, क्योंकि बोलना है उसे। तो कैकेयी ने जब मंथरा की ऐसी दशा देखी तो पुचकारने लगे, उसी हाथों से अब मंथरा को पुचकारने लगी। ये दूसरी गलती कैकेयी की, कह रहे हाथ से नहीं बेल्टों से मार मार कर भगाना चाहिए था इस मंथरा को। तो पुचकारने लगे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, गलतियां हो जाती होंगी। तो फिर पूछने लगी कि तुम ऐसी बात क्यों बोल रही हो, मंथरा से पूछी। तो अब मंथरा के अंदर फिर से धाड़स आया। अब बाण लगा जगह पर। तो अब मंथरा कहती है कि थोड़ा सोच विचार करो, सोच विचार करो महारानी, कि राज्याभिषेक हो रहा है कल राम का और तुम्हें किसी ने सूचित किया, मैं आकर बता रही हूं। अरे मैं हूं कौन, मुझे कोई जानता तक नहीं, मैं एक कुबरी स्त्री, मैं आकर तुम्हें सूचित कर रही हूं कि कल राम का राज्याभिषेक है। तो तुम यदि प्रभु श्री राम से इतना प्रेम करती हो और यदि महाराज दशरथ तुम्हें इतना मानते हैं तो वो स्वयं आकर तुम्हें क्यों नहीं बता। अरे सारा अयोध्या नगर जानता है, अरे गली गली के बच्चे जानते हैं कल, और आप नहीं जानती। तो सोच विचार करो कि क्यों नहीं बताया गया तुम्हें। तब कैकेयी थोड़ा सोचने लगी, ये भी बात सही है कि क्यों नहीं बताया मुझे। तो मंथरा कहती है अब मैं बताती हूं क्यों नहीं बताया, जैसे वो सब कुछ जानती है। तो वो कहती है कि सबसे पहले तो ये दशरथ और कौशल्या पर तुम अपना विश्वास रखना बंद कर दो। ये जो तुमने इतना अंधविश्वास रखा है ना अपने पति के ऊपर और अपने सौत के ऊपर कौशल्या के ऊपर, ये अंधविश्वास बंद कर दो, क्योंकि अब मैं बताती हूं कि इनका षड्यंत्र क्या है तुम्हारे विरोध में। तो कहती है कि सबसे पहली बात तो तुम्हें सूचित नहीं किया, और दूसरी बात राम का राज्याभिषेक है कल, भरत किधर है? तुम्हारे पुत्र भरत कहां पर है? अरे जो सगा भाई है वो नहीं राज्याभिषेक में, तो ये राज्याभिषेक किस प्रकार का राज्याभिषेक है? ये ब्रह्मास्त्र था मंथरा का, जो ठीक जाकर कई कई के हृदय में लगा, और कई कई भी सोचने लगी हां ये भी बात सत्य है कि राज्याभिषेक इतना बड़ा त्योहार, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है कल, और मेरे भरत को कोई नहीं बुला रहा। तो कैकेयी फिर कहती है कि ये षड्यंत्र रचा है दशरथ कौशल्या ने मिलकर, कि उन्होंने तुरंत, और उनका कोई षड्यंत्र नहीं था, माता कौशल्या नहीं जानती थी अब तक, वो तो एकदम निष्कपट, और महाराज दशरथ तो गए थे वशिष्ठ मुनि के पास, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि कल ही कर दो, तो इतने कम समय में इतनी तैयारियां करनी है और भरत को उनके ननिहाल से बुलाया जाए, बहुत समय लग जाता था, तो कोई षड्यंत्र नहीं था। ये षड्यंत्र था इसका, इस मंथरा का। तब मंथरा कहती है कि देखिए षड्यंत्र, कि ये दोनों ने मिलकर पहले भरत को भेज दिया, तुम्हें सूचित नहीं किया, और कल राम को राज्य मिल जाएगा, और तुम्हें जैसे दूध से मक्खी को फेंक दिया जाता है वैसे तुम्हें फेंक दिया जाएगा। ये उदाहरण दे रही, देखो एक एक उदाहरण देखिए मंथरा का, चुन चुन के उदाहरण दे रही। वो कहती है जैसे दूध से, दूध में यदि मक्खी गिर जाए तो केवल मक्खी चूस होगा जो उस मक्खी को चूस कर दूध पी ले, इसलिए उनको मक्खी चूस कहा जाता है, परंतु जब आपने भी सुना होगा, या दूध का उदाहरण सही नहीं, चाय का उदाहरण देना होगा शायद, कि जब चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को कैसे फेंक दिया जाता है, उसमें कोई आसक्ति होती है? अरे चाय में मक्खी गिरी, क्या सौभाग्य इस चाय का, क्या सौभाग्य मेरा, क्या उस मक्खी को फेंकने में कुछ समय लगता है? अरे मक्खी क्या, वो चाय को फेंकने में कुछ समय नहीं लगेगा, पता नहीं कलयुग में समय भी लग जाए, क्योंकि चाय बहुत प्रिय है। तो जैसे मक्खी को फेंका जाता है, एक व्यक्ति हमें उदाहरण दे रहे थे कि जैसे वो बोल रहे थे कि ये जो उदाहरण है दूध या चाय में से मक्खी को जैसे फेंका जाता है, अर्थात किसी का इस्तेमाल कर उसे फेंक दो, किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए इस्तेमाल करो और फिर उसे फेंक दो, ये उसी के समान है। तो उदाहरण दे रहे थे कि अक्सर आजकल आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो लोग केवल आपको इस्तेमाल करते हैं, वो आपसे स्नेह नहीं करते। ऑफिस में जब जाते हो तो वो बॉस आपसे स्नेह नहीं करता, वो प्रेम से आपका ऑफिस में स्वागत नहीं करता, आओ आओ आज हमारा सौभाग्य आज भी आप ऑफिस में आए, वो केवल इस्तेमाल करता है। तो वो उदाहरण दे रहे थे कि ऑफिस में ये बॉस अपने सेवक का इस्तेमाल कैसे करता है, इस्तेमाल कर लिया 20-25 साल और उसके बाद फेंक दिया बाहर ऑफिस, जाओ अब कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, अब तुम किसी काम के नहीं। तो उदाहरण दिए कि जैसे हम जब किसी व्यंजन को खाते हैं, वो उदाहरण दे रहे थे पोहा का, कि जब पोहा को खाते हैं तो पोहा में जो कड़ी पत्ता डाला जाता है उसको कैसे निकालते हैं? निकालकर बाहर। तो वैसे ही आजकल के जो बॉस हैं अपने जो उनके सेवक हैं उनको कड़ी पत्ते की तरह निकाल के फेंकते हैं। तो कड़ी पत्ते का काम क्या है कि कड़ी पत्ता बेचारा जलता है पहले पोहा से, उस कड़ी पत्ते को पहले डाला जाता है छौंक में, और वो कड़ी पत्ते का गुण है कि कड़ी पत्ता, आप लोग कड़ी पत्ता जानते हैं ना? अच्छा, तो नहीं जानते हो तो अपने बॉस से जान लेना, वो बता देंगे कड़ी पत्ता क्या होता। तो कड़ी पत्ता करता क्या है कि वो पहले छौंक में जाता है और वो उसके अंदर सुगंध होती है कड़ी पत्ते के अंदर, तो अपनी सारी सुगंध फैला देता है उसके अंदर, अपनी सुगंध फैला देता है। और क्योंकि सारी सुगंध फैल गई अब उसके अंदर कोई सुगंध नहीं बाकी रह गई, तो इसलिए जब खाने वाला व्यक्ति उसे निकालकर फेंक देता है, कोई काम का नहीं है। और वो एक और उदाहरण दे रहे थे जैसे आम की गुठली, आम का सीजन शुरू होने वाला है तो आम की गुठली, जब आम की गुठली को कोई खाने जाता है तो बहुत मन ललचाकर चूस चूस कर उस गुठली को खाता है। जब पूरा उसे चूस लेता है गुठली को, तब करता क्या है? ऐ फेंक वैसे फालतू। तो ये व्यक्ति बता रहे थे कि मैं जब नौकरी करता था तो ये मेरा बॉस मुझे कड़ी पत्ता और गुठली की तरह व्यवहार करता था कि पूरा चूस लिया और उसके बाद में जा बाहर, अब कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी। तो मंथरा देखो यही सब उदाहरण दे रही कि महारानी कैकेयी, आप समझ लो आप कोई महारानी नहीं, यहां पर आपको लग रहा होगा कि आप कोई बहुत बड़ी महारानी हो, अरे कड़ी पत्ता हो खाली, गुठली हो चूसी हुई आम की, और मक्खी हो दूध की मक्खी, ये महाराज दशरथ और कौशल्या मिलके तुम्हें अयोध्या नगरी दूध के समान है, नहीं अयोध्या नगरी कटोरे के समान है, और महाराज दशरथ और कौशल्या दूध के समान है और तुम मक्खी के समान, ये समझ लो। तुम सोच रहे हो कि तुम वो दूध की मलाई हो, अरे कोई मलाई वलाई नहीं, दूध की मलाई तो वो राम और तुम हो केवल एक मक्खी। ये सारा षड्यंत्र है तुम्हें वहां से निकालने का, फेंकने का। जब कैकेयी ये सारी बातें सुन रही हैं तो कैकेयी अब धीरे धीरे ये सारे बाण लग रहे हैं कैकेयी को। ये कैकेयी की गलती है कि वो सुनते जा रही है, इसलिए बताया गया है कि जब ऐसा दुस्संग होता है तो सबसे पहले सुनना बंद करना चाहिए इनके मुख से, इनके दुर्वचन सुनना बंद करना चाहिए, क्योंकि जब इनके मुख से सब सुनेंगे तो सुनने से सब कुछ होता है। इतना श्रवण के ऊपर महत्व क्यों दिया गया है कि परीक्षित महाराज ने केवल सुना और वो भगवत धाम प्राप्त किए, प्रहलाद महाराज ने सुना कब? जब वो अपनी माता के गर्भ में थे। श्रवण का महत्व देखिए कि नारद मुनि के प्रवचन को अपनी माता के गर्भ में सुनकर उन्होंने इतना दृढ़ विश्वास पैदा कर लिया भगवान के ऊपर। प्रहलाद महाराज कोई ट्रेनिंग नहीं लिए थे साधना भक्ति की, माता के गर्भ में श्रवण किया, परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, अर्जुन केवल श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण ने और कोई कुछ सिखाया नहीं कि गांडीव को कैसे उठाओ और ऐसे उस पर तीर लगाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ, ये सब कुछ नहीं सिखाया, केवल सुनाया। इसलिए श्रवण का इतना महत्व है। इसीलिए दोनों इतने शक्तिशाली है, प्रवचन और दुर्वचन दोनों, कि प्रवचन हमें मुक्ति दिला सकते हैं और दुर्वचन हमें और बाधित कर सकते हैं इस भौतिक संसार में। जैसे कि मैं एक हमारे संडे प्रोग्राम में उदाहरण दे रहा था कि वचनों के ऊपर देखिए कि कितना महत्व बताया गया है, कि कई धर्मों में पति पत्नी कई वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, कि 20, 25, 30, 40, 50 साल तक एक साथ हैं, और एक दिन पति ने पत्नी से 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक। होता है मुसलमानों में 3 बार तलाक बोलने से हो गया तलाक, कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, सस्ते में काम हो गया। देखिए शब्दों में शक्ति। हालांकि आजकल तो स्थिति ऐसी है कि वो प्रतीक्षा करते होंगे कब ये 3 बार बोले तलाक तलाक तलाक। अब विवाह का संबंध, वो रिश्ता स्थापित होता है वो भी शब्दों से। ये भी उदाहरण हमने कई बार दिया है कि लड़के लड़के के माता पिता एक साथ आते हैं और आदान प्रदान किसका होता है, शब्दों का होता है। वो बताते हैं कि इसके इतने गुण हैं, उसके उतने गुण हैं, फिर शब्दों के आदान प्रदान से आसक्ति बढ़ती है और फिर विवाह होता है, और फिर तो फिर आसक्ति और बढ़ती रहती है साधारणतः। और इतनी आसक्ति, इतने वर्षों तक आसक्ति केवल 3 शब्दों से खत्म। तो वैसे ही हमने विवाह कर रखा है माया देवी से। किससे? माया देवी से। और विवाह किया कैसे है? सुन सुनकर। माया देवी सुनाती रहती है उनका प्रवचन कि इसे देखो, इसे खाओ, इसे चखो, यहां जाओ वहां जाओ, सुन सुनकर, सुन सुनकर माया देवी के साथ हनीमून मना रहे हैं। इतना तो 3 शब्द, कौन से 3 शब्द हमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं तलाक लेना है यदि इनसे, तो हरे कृष्ण और राम। वो जैसे तलाक तलाक तलाक, तो वैसे हरे कृष्ण और राम। और इसे हम कैसे कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाकर तलाक मिलेगा माया देवी से, नहीं तो छोड़ने नहीं वाले। तो यहां पर कई कई की ये सारी गलतियां कि कई कई सुने जा रही थी, सुने जा रही थी। और मंथरा कहती है, अब देखिए मंथरा क्योंकि पूरा कपट की शरण ली है मंथरा, तो सब प्रकार के कपट और झूठ और षड्यंत्र ये सब का सहारा लिए है। तो मंथरा कहती है कि 15 दिन से मैं कुछ खाई नहीं हूं, देखो सूख गई हूं मैं, और ऐसा कुछ नहीं था, झूठ बोल रही थी, खा पी कर मस्त थी लोटपोट। और कहती है कि मैं 15 दिन से खाई नहीं हूं, क्योंकि 15 दिन से जब से मुझे पता लगा है कि राम का राज्याभिषेक, और 15 दिन से इसे कहां से पता लगता, अरे एक दिन पहले तो सब कुछ हो रहा है, झूठ बोलती है। तो जो कपटी होते हैं सबसे पहले झूठ का सहारा लेते हैं। तो मंत्रा कहती है कि 15 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, और मैं ज्योतिष के पास गई थी, और मैंने ज्योतिष के पास जब मैं गई तो मैंने ज्योतिष को दिखाया आपके पुत्र भरत, इनकी पत्रिका दिखाई, तो उन्होंने कहा कि राजा तो भरत को ही बनना है, सब झूठ, किसी ज्योतिष के पास नहीं गई और कोई इसने उपवास वगैरह नहीं रखा था 15 दिन तक। तो मंथरा कहती है, अब वो आश्वासन दिला रही है कैकेयी को। कैकेयी ने पूछा कि यदि राम को राजा बनाया जा रहा है तो इसमें तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो देखिए कैकेयी क्या कहती, मंथरा क्या कहती है, मंथरा कहती है अरे राम को राजा बनाया जाए इसका सबसे पहला वोट मैं दूंगी, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, अरे मैं तो इसकी अभिलाषी हूं कि राम राजा बने, और मुझे क्या मिलने वाला है, कब भरत राजा बने या राम राजा बने, अरे भरत राजा बनेंगे तो मुझे थोड़ी अपनी रानी बनाने वाली है। मैं थोड़ी आपकी बहू बनूंगी, ये थोड़ी सौभाग्य मेरा है। इसका अर्थ है कि उसके मन में ये सारी बातें चल रही थी, तभी तो जीभा पर आ रही है सारी बातें कि है कुमति कुजाति और कुबरी, परंतु फिर भी मन में आशा है कि कैकेयी की बहू बन जाऊं एक दिन। तो कहती है कि अरे मुझे क्या मिलने वाला है, यदि राम राजा बनेंगे तो उनका तो विवाह हो चुका है, वो थोड़ी मुझसे विवाह करेंगे, और ये भरत थोड़ी कोई उनकी पत्नी बनूंगी मैं, और क्योंकि मैं कुबड़ी स्त्री हूं तो मुझसे विवाह करेगा कौन, तो यदि मैं सुंदर होती तो हो सकता था कि मेरा विवाह हो जाता अयोध्या में किसी से, कि कोई मेरी सुंदरता को देखकर मुझे पसंद कर लेता और मैं उसके साथ रहती और उसकी सेवा करती, परंतु वो सब तो होने वाला नहीं, तो मेरा एकमात्र जीवन का उद्देश्य है तुम्हारी सेवा करना, इसीलिए राम राजा बने बहुत अच्छी बात है, परंतु राम को राजा इस कपट से क्यों बनाया जा रहा है, और तुम्हारे विरोध में षड्यंत्र रचकर क्यों उन्हें राजा बनाया जा रहा है, इसलिए मैं आपके हित के विषय में कह रहा हूं कि मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं, अरे मैं कौन हूं द्वेष करने वाली, देखिए यही तो है द्वेष करने वाली, और बोल रही कि मैं कौन हूं द्वेष करने वाली, मैं तो केवल आपका हित चाहती हूं कि आप ये साजिश का एक प्राणी न बने, इसलिए आपके हित के लिए मैं बोल रही हूं, और वो उल्टा कैकेयी के अहित के लिए बोल रही थी वो सब। तो मंथरा कहती है कि मुझे कोई भी दुख सहन हो सकता है हे महारानी, आप मेरी जीभ क्या मेरा सर फोड़ दीजिए, मुझे कोई भी दुख सहन हो सकता है, परंतु कोई आपके विरोध में षड्यंत्र रचे ये मुझे कदापि सहन नहीं होगा, बिल्कुल ये मैं सहन नहीं कर सकती। तो कैकेयी सोचने लगी कि देखो कितनी हितैषिणी है मेरी, तब कैकेयी मंथरा की बातों से प्रभावित हो रही थी। उदाहरण दिया है कि जैसे हिरण शिकारी की मुरली से प्रभावित हो जाता है, हिरण को जब मारना होता है तो शिकारी पहले बाण नहीं चलाता, पहले मुरली बजाता है, वैसे ही मंथरा पहले मुरली बजा रही है, ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, इसे कहते हैं चिकनी चुपड़ी, चिकनी चुपड़ी बातें। क्यों इसे चिकनी चुपड़ी कहते हैं, क्योंकि ये बातें चिकनी होती हैं कि आप फिसल जाएं, और ये ऐसी चुपड़ी होती हैं कि चिपक जाए। इसे कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातें। तो मंथरा ये ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी जो जो कई कई हिरणी के समान उस शिकारी के मुरली की ध्वनि को इतना ज्यादा आस्वादन करते हुए सुन रही थी कि ये नहीं जानती कि इसके पश्चात बाण चलने वाला है, और बाण चल चुका था। ये देखिए माता सरस्वती की शक्ति कि बाण चला दिया परंतु कई कई को पता भी नहीं लगा कि वो घायल हो रही है। तब कई कई वो धीरे धीरे मंथरा के ऊपर विश्वास करने लगी कि मंथरा तुम वास्तविक रूप में जो बोलती हो उसमें, मंथरा ने कहा वही तो मैं बोल रही हूं कि बाकी सब तो ठीक है, मैं मान लूंगी, भरत को क्यों ननिहाल भेजा गया, क्यों भरत की अनुपस्थिति में राज्याभिषेक हो रहा है, सोचो, बुद्धि लगाओ यदि है तो, मेरी तरह बुद्धि यदि है तो, और कौन सी बुद्धि लगाओ, मेरी तरह मेरी कुबुद्धि लगाओ। तो जो मंथरा जैसे व्यक्ति होते हैं इनका एक ही काम होता है, झगड़ा लगाना बस। एक कथा है, एक बार एक गांव में एक स्त्री गई और वो बहुत कुत्सित हृदय की स्त्री थी, हर समय झगड़ा लगाने में उसे बहुत आनंद आता था। कई बार लोगों को इसमें बहुत आनंद आता है कि झगड़ा लगा दो दो के बीच में और फिर मजा देखो। तो उसे झगड़ा लगाने में बहुत आनंद आता था इस महिला को। तो वो इस गांव में झगड़ा लगाने के लिए गई तो उसने देखा कि बहुत आसानी से वो सब में झगड़ा लगा सकती थी, परंतु एक दंपति थे, एक पति पत्नी में वो झगड़ा नहीं लगा पा रही, तो ये चैलेंज था उसके लिए। तो उसने अब ये चैलेंज, ये इस ललकार को लिया कि नहीं, इस चुनौती को लिया कि इनके अंदर झगड़ा तो मुझे लगाना है। तो ये कुत्सित हृदय की स्त्री गई और सबसे पहले वो पत्नी से अकेली में मिलती है और पत्नी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा तुम्हारे पति के ऊपर बहुत प्रेम है। तो पत्नी ने कहा हाँ तो सही बात है, वो तो तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत कुछ सुना है तुम्हारे पति के बारे में, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी कि तुम्हारे पति में नमक की प्रधानता है और वो पिघलने वाले हैं, गलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो इतना मोह मत रखो इस पति के अंदर जिसके अंदर नमक की प्रधानता है और नमक जैसे गल जाता है कुछ ही समय में, वैसे इनका शरीर गलने वाला है। तो पत्नी के अंदर ये वायरस डाल दिया। अब गई पति के पास, तो पति के पास जाती है और पति के पास जाकर वो पति से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा तुम्हारे पत्नी के ऊपर बहुत प्रेम है। तो पति ने कहा सही सुना है। तो ये कहती है कि तुम्हारी जो पत्नी है उसमें वो सर्वगुण संपन्न है, सती सावित्री है, सब कुछ है उसके अंदर, परंतु मैंने उसकी कुंडली देखी है, वो पिछले जन्म में एक राक्षसी थी वो, और वो इस जन्म में पैदा हुई है तुम्हें खाने के लिए। तो ये वायरस पति के अंदर डाल दिया, तो पति में ये वायरस डाल दिया, पत्नी में वो वायरस डाल दिया। अब दोनों एक दूसरे को उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पत्नी अपने पति को देख रही है कि ये नमकीन दिखते हैं आजकल, तो अब पत्नी को अपने पति नमकीन दिखने लगे और पति को अपनी पत्नी राक्षसी दिखने लगी कि जब वो पत्नी भोजन बनाने के लिए चाकू उठाती तो देखते चाकू क्यों उठाई, अब वो सब्जी काट रही है परंतु ये दूर बैठा देखते रहे, तो पत्नी देखती कि सब्जी की तरफ क्यों देख रहे हैं ऐसे, शायद नमक ज्यादा है इसलिए नमक ही सब्जी की तरफ देखेगा इतना। तब दोनों के अंदर ये शंकाएं एक दूसरे के प्रति। तो एक दिन हुआ क्या कि पत्नी ने सोचा कि हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, लेकिन फिर भी डाउट तो आ गया है अंदर, संशय आ गया। तो पैर दबा रही थी अपने पति के, और पति वो साधारणतः जब उसकी पत्नी पैर दबाती तो पति सो जाया करते, परंतु वो आंख खुली रखकर चौकन्ना वो देख रहे हैं पैर ही दबा रही ना। तो ये पत्नी पैर दबाते दबाते पत्नी ने सोचा कि नमक की प्रधानता है, थोड़ा चक्कर देखती हूं। तो पत्नी ने किया क्या कि हाथों के पास गई और थोड़ा चाटने लगी हाथों को कि नमक का टेस्ट आता है क्या। तो जैसे ही उसने अपना मुख इसके हाथ के पास और अपनी जीभ बाहर निकाल ली तो पति को लगा अरे भागो ये तो राक्षसी, ये उसने सही कहा, ये तो राक्षसी निकली खाने वाली है मुझे। वो भागे पति वहां से, अपनी धोती पकड़े दुम दबाकर जो भी वहां से भागे। और सब गलत था, न तो ये बेचारे नमकीन थे न ये राक्षसी थी, दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु बीच में ये स्त्री आकर इसने ये फूट डाला। तो वही मैं बता रहा था कि आजकल ये जो टीवी के सीरियल हैं ये सब वो काम कर रहे हैं, मंत्रा के काम करते हैं कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सास बहू में सब कुछ ठीक चलता होगा, परंतु फिर वो टीवी सीरियल देखने के बाद वो सास बहू फिर एक दूसरे को देखते हैं तो ये मेरी शत्रु ये वही सास के समान है जो अभी अभी देखा है टीवी में। तो मंथरा का ये काम देखिए कि सब गलत बोल रही है और कहती है कि जो कौशल्या है ना, ये कौशल्या इतनी गंभीर क्यों दिखती है। माता कौशल्या बहुत गंभीर महिला थी, ये इतनी गंभीर इसलिए है कि ये अपना कपट छिपाती है उस गंभीरता के अंदर। और ये जो दशरथ है ना, इतना मीठा मीठा बोलते हैं तुमसे, इनका मुंह मीठा है मन मलिन है, जैसे इसका बहुत अच्छा है। तो ये दशरथ का मुंह बहुत मीठा है परंतु मन मलिन है। और एक सुंदर उदाहरण, ये मंथरा के उदाहरण देखिए, क्योंकि माता सरस्वती प्रेरित कर रही हैं तो ऐसे ऐसे उदाहरण देती हैं। तो मंथरा कैकेयी से कहती हैं कि तुम्हारी जो प्रीति है ना राम और सीता में, वो प्रीति के दिन गए, भूल जाओ ये सारे प्रीति के दिन, ये प्यार मोहब्बत के दिन ये सब गए, कोई किसी से प्रीति नहीं रखता। और उदाहरण क्या देती है कि सूर्य का प्रकाश कब तक कमल को पोषता है, कमल का पोषण होता है सूर्य के प्रकाश से। तो ये उदाहरण देती है कि कब तक सूर्य का प्रकाश कमल को पोषता है, जब तक नीचे पानी है कमल के। तो जैसे ही वो पानी चला गया तो वही सूर्य का प्रकाश अब जलाएगा उस कमल को। सुंदर उदाहरण है बहुत, परंतु बहुत गलत दृष्टिकोण से दिया गया है। तो ये उदाहरण देते हुए मंथरा कहती है कैकेयी से कि महाराज दशरथ ने आपका भोग तो कर लिया और जब अब राजा बनाने की बात आई तो अब अपने बेटे को राम को राजा बना रहे हैं। हालांकि भरत भी उनके ही बेटे थे परंतु वो कौशल्या को संतुष्ट करने के लिए राम को राजा बना रहे हैं। और वो भरत राम को राजा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो अयोध्या वासी से डरे हुए हैं, उन्हें कोई प्रेम नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो डरे हुए हैं। क्योंकि यदि वो भरत को राजा बनाएंगे तो सारे अयोध्या वासी चढ़ जाएंगे इनके ऊपर, ये किसे राजा बनाया है। इसलिए डर के कारण वो राम को राजा बना रहे हैं। ये सारी बातें कैकेयी सुन रही है और कैकेयी फिर मंथरा से कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? तुम तो केवल झाड़ पोछा लगाने वाली दासी हो मेरी, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? तो मंथरा कहती है अरे मैं कोई झाड़ू पोछा लगाने वाली नहीं हूं, खाली मैं तुम्हारी हितैषिणी हूं। मैं कोई वेतन लेने के लिए काम नहीं करती तुम्हारा, तुम मुझे खाना साड़ी वाड़ी देती हो इसके लिए काम नहीं करती मैं तुम्हारा हित चाहती हूं इसलिए सब जानती हूं। तो मंथरा वो कैकेयी से कहती हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं, देखिए शास्त्र का उदाहरण देती है, शास्त्र का उदाहरण देती हैं कि जैसे गरुड़ जी की माता, गरुड़ जी के माता का नाम था विनद और सर्पों की माता कद्रु। तो सर्पों की जो माता थी कद्रु, उसने षड्यंत्र रचा था गरुड़ जी की माता को मारने का, क्योंकि गरुड़ जी और सर्पों में बैर रहता है। तो मंथरा देखिए शास्त्रों का उदाहरण दे रही है अब कैकेयी को कि जैसे कद्रु ने विनद के प्रति षड्यंत्र रचा था, वैसे ये कौशल्या षड्यंत्र रच रही है आपके अगेंस्ट, इसलिए आप सावधान हो जाइए, ये सब इस फेर में मत जाइए कि ये बहुत बड़ा उत्सव है और आपके हित में है ये उत्सव, कुछ नहीं है आपके हित में ये सब कुछ। तो अब यहां पर मंथरा ने जब इतने सारे अपने वाग्माण चला दिए तो अब कैकेयी मंथरा पर पूरा पूरा विश्वास रख ली और कैकेयी मंथरा से कहती है कि मंथरा तुम्हारे समान मेरी हितैषिणी और कोई नहीं इस संसार। देखिए कैकेयी कि तुम्हारे जैसे कोई मेरी हितैषिणी नहीं है। और कैकेयी क्योंकि मंथरा के ऊपर इतना विश्वास कर रही है इसलिए कैकेयी का दुष्परिणाम देखिए, मंथरा के दुर्वचनों को सुनने का दुष्परिणाम। केवल सबसे पहला दुष्परिणाम कि कैकेयी विधवा हुई, महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए राम के वियोग में, तो सबसे पहला दुष्परिणाम कैकेयी विधवा हुई। किसके लिए? ये दुर्वचन सुनने के वजह से। दूसरा दुष्परिणाम कि भरत जब आए, जब भरत को पता लगा कि मेरी मां ने ये सब कुछ किया है, तो भरत ने कैकेयी से कहा कि आज से न तो मैं तुम्हारा पुत्र न तुम मेरी मां, आज से मैं तुम्हें कभी मां बोलकर नहीं बुलाऊंगा। तो ये दूसरा दुष्परिणाम जो कैकेयी को भुगतना पड़ा। और सबसे बड़ा दुष्परिणाम कि राम का संग छूटा, इससे बड़ा दुष्परिणाम और कोई नहीं था। और देखिए ये सारे तीन दुष्परिणाम कैकेयी को भुगतने पड़े केवल मंथरा का दुर्वचन सुनने के वजह से। इसलिए वह मंथरा को अपना हितैषिणी मान रही है। तो यहां पर ग्रंथकार हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मंथरा से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, कि जब असत संग होता है किसी के जीवन में तो उसका जीवन कितना पतित हो जाता है। ये उदाहरण है मंथरा और कैकेयी, इन दोनों के उदाहरणों से, कि मंथरा और कैकेयी के उदाहरण से हमें ये पता लगता है कि असत संग से क्या दुष्परिणाम होता है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग का अर्थ क्या है? सत्संग, कि सत्संग करने से सर्व सिद्धि होए। तो इसके विपरीत यहां पर हम क्या देखते हैं, असत्संग जब कोई करता है तो सर्वनाश होए, सर्व सिद्धि नहीं सर्वनाश। तो कैकेयी अपना सर्वनाश करा रही है और बाकियों का सर्वनाश। तो अब तक कैकेयी ने खाली सुना, अब सुनने के बाद कैकेयी बोलना शुरू की है। और कैकेयी क्या कही है इसकी चर्चा हम करेंगे कल सुबह। तो कल रामनवमी का पावन पर्व है और हम सभी को सुबह की मंगलारती का निमंत्रण देना चाहेंगे कि कल सुबह की मंगलारती में आप लोग सब आइए, 5 बजे होती है, तत्पश्चात रामनवमी का महोत्सव शुरू हो जाएगा सुबह 5 बजे से प्रभु श्री राम की मंगलारती से, और सुबह की राम कथा होगी सुबह 8 बजे, और शाम को तो रामनवमी का महोत्सव है ही, जिसमें ठीक 6:30 बजे सीताराम लक्ष्मण इनका अभिषेक होगा। तो जो भक्त अभिषेक करना चाहते हैं वो ठीक 6:30 बजे पहुंच जाएं, तो 6:30 बजे अभिषेक होगा संध्या के समय, और फिर कीर्तन, तत्पश्चात राम कथा, और राम कथा के पश्चात हमारे ड्रामा पार्टी ड्रामा करेंगे। तो जैसे प्रभु श्री राम को भी एक दिन पहले सूचित किया गया था कि उनका कल राज्याभिषेक है, वैसे ड्रामा पार्टी को मैं अभी सूचित कर रहा हूं कि कल उनका ड्रामा है। तो ड्रामा होगा और उसके पश्चात और कीर्तन, महाआरती, प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता इनकी, और फिर महाफीस्ट हम सबके लिए। तो कल के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से होगी। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग सब सुबह से ही कल के सब रामनवमी के महोत्सव में भाग लीजिए और अपना जीवन